आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये क्लास 10th के साइंस का सेकेंड चैप्टर है और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पेज नंबर 27 पर था ये टॉपिक, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये किस तरीके से अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपनी खुद की रक्षा किस तरीके से करते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल करके। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बी स्टिंग के बारे में, यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसके काटने से किस तरीके से हम लोगों को पेन और इरिटेशन जो होता है उसका कॉज क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हनी बी होती है जब ये काट लेती है तो क्या होता है, ये एक एसिड हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है, हमारे शरीर में डाल देती है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है। और इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी ऐसे बेस का इस्तेमाल करें जो उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। जैसे कि घर पे हमारे बेकिंग सोडा पड़ा होता है तो उसका इस्तेमाल अगर हम इफेक्टेड एरिया पे करें तो हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है पेन और इरिटेशन से। सिमिलरली एक लीव होती है, एक पौधे की लीव होती है, नेटल नाम है उस पौधे का, उसकी जो लीव्स होती है वो थोड़ी हेयरी होती है, हल्के हल्के बाल बाल से होते हैं। प्लांट्स के ऊपर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, पत्तियों के ऊपर हल्के हल्के बाल होते हैं, लेकिन कुछ पौधों के ऊपर जैसे कि नेटल नाम का जो पौधा है इसकी जो पत्तियों के ऊपर बाल होते हैं अगर ये हमारे बॉडी से टच हो जाए तो काफ़ी पेन और इरिटेशन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो हेयरी लीव्स होती है, ये जो हेयर है ये मिथेनोइक एसिड नाम का एक एसिड सीक्रीट करती है, पैदा करती है, और वो हमारे शरीर में टच हो जाता है या फिर हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट हो जाता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होती है। ये जो नेटल पौधा होता है ये बेसिकली एक हर्बेशियस पौधा है, ये हरा भरा पौधा है और वाइल्ड में यानी कि जंगली इलाकों में ये मिलता है। इसकी हेयर टच होने पर काफ़ी पेन और इरिटेशन करते हैं क्योंकि ये मिथेनोइक एसिड सीक्रेट करता है। इससे निजात पाने का एक ट्रेडिशनल तरीका जो लोग आसपास के जो लोग लोकल लोग हैं वो यूज़ करते हैं वो होता है डॉक प्लांट। डॉक प्लांट जनरली देखा गया है कि वो नेटल पौधे के बगल में ही या उसके आसपास ही उगता है। तो अगली बार अगर आप लोग कभी ट्रैकिंग पर जाएं, पहाड़ों पर जाएं और आप टच हो जाएं नेटल पौधे से तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको डॉक पौधे के पत्तों को रगड़ लेना है उस एरिया पर जहाँ पर नेटल का पौधा आपसे टच हुआ है। और आप गेस कर सकते हैं कि अगर नेटल पौधे से एसिड पैदा हो रहा है जिससे हमें नुकसान होता है तो ज़रूर डॉक प्लांट जो है उसके अंदर बेस होता होगा जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके हमारे पेन को कम करने में मदद करता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि विनेगर। विनेगर जो है सिरका जिसे कहते हैं, ये एसिटिक एसिड बनाने में मदद करता है, इससे एसिटिक एसिड मिलता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है संतरे के अंदर, और टैमरिंड यानी कि इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, टमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, सॉर मिल्क या फिर कर्ड दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड नींबू के अंदर, और जो एंट स्टिंग है जो चींटियां काट लेती हैं तो उनके काटने में मिथेनोइक एसिड होता है नेटल स्टिंग में, यानी कि जो नेटल का पौधा है उसकी चुभन में होता है मिथेनोइक एसिड। तो ये तो कुछ नेचुरली यानी कि प्राकृतिक अकरिंग कुछ चीज़ें हैं और इनसे एसिड बनता है नेचुरली ही। इतना डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किए थे कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 28 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन था, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। मैंने आपको बताया था कि जितना लो पीएच होता है उतना ही ज्यादा H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए और बी में से लोअर पीएच किसकी है, ए की है 6, यानी कि पीएच 6 वाली जो सोल्यूशन है ए सोल्यूशन उसके अंदर H+ आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो सोल्यूशन बी है उसके अंदर H+ आयन कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होगी और वो नेचर में प्रकृति में बेसिक है और सोल्यूशन ए जो है वो एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, What effect does the concentration of H+ aqueous ions have on the nature of the solution? तो जितना ज़्यादा किसी solution में H+ ions होंगे उतना ज़्यादा वो acidic होगा और उतना ही lower उसका pH होगा। तो किसी solution के अंदर H+ aqueous ions उसकी nature decide करते हैं, बताते हैं कि वो acid है या base है। जितना ज़्यादा होगा H+ ion का concentration उतनी ही ज्यादा एसिडिक वो सोल्यूशन होगी, जितना लोअर होगा एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन उतनी ही लेस एसिडिक वो सोल्यूशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सोल्यूशंस ऑल्सो हैव एच प्लस एक्वस आयन्स, इफ येस देन वाई आर दीज बेसिक। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था, बेसिक सोल्यूशंस में ऐसा नहीं है कि उनमें बिल्कुल भी एच प्लस एक्वस आयन्स होते ही नहीं है, उनमें एच प्लस आयन्स होते हैं लेकिन वो बहुत ही लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से उनकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है। आप लोगों को पता है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो एच प्लस एक्वस आयन्स को चेक करके ही कलर बताता है। अगर किसी सोल्यूशन में एच प्लस एक्वस आयन्स नहीं होंगे तो वो कलर ही नहीं चेंज करेगा। अगर वो कलर चेंज कर रहा है इसका मीनिंग है कि उस सोल्यूशन में एच प्लस आयन्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा हैं। अगर कम है किसी सोल्यूशन में एच प्लस एक्वस आयन्स और बहुत ही कम है तो क्या होगा कि वो लगभग उसमें कहेंगे कि हम वो बेसिक सोल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर कंपैरेटिवली तुलना करें तो OH- माइनस जो आयन्स है वो ज्यादा है और H+ जो आयन्स है वो बहुत ही कम है। और आपको पता है ऐसे ही सोल्यूशंस जिनके अंदर OH- माइनस आयन्स ज्यादा हो और H+ आयन्स कम हो, इन्हें हम बेसिक कहते हैं और इनका पीएच मोर देन 7 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विथ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। तो पूछा गया है कि जो किसान है वो किस अवस्था में, किस स्थिति में अपनी फील्ड में, यानी कि उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर कोई बेस डालेगा। ये सारे के सारे बेसेस हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये भी एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बेस है। तो कोई भी फार्मर अपनी मिट्टी में बेस डाल रहा है इसका मतलब उसे पता है कि उसकी मिट्टी की एसिडिटी बढ़ गई है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वो वहां पर बेस ऐड कर रहा है। ये तो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था अबाउट सॉल्ट्स, नमक के बारे में। आप लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने काफी सारे रिएक्शंस पढ़े हैं जिसमें आपने देखा है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में या फिर मेटल के साथ रिएक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमें यहाँ पर अब ये सीखना है कि ये सॉल्ट क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किन कंपाउंड्स को हम सॉल्ट कहते हैं, ये सब सीखना है। और इसमें सीखते सीखते हमने फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात की थी, और फैमिली ऑफ सॉल्ट्स समझने के लिए हमने एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 2.13 पेज नंबर 28 पर है। इसमें आप लोगों को अलग अलग सॉल्ट्स के नाम बताए गए थे, आपको केमिकल फॉर्मूले बताने थे, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है MgSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट आपको बताए गए थे, आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने थे जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिए हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो अलग अलग सॉल्ट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका हम ब्रेकडाउन करें तो हमें मिलेगा Na+ और Cl-। और इसी तरीके से अगर हम सोडियम सल्फेट लें तो उससे हमें क्या मिलेगा, Na2SO4 से क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा Na+ और SO4 2-। तो दोनों ही सॉल्ट्स में NaCl और Na2SO4 में हमें Na+ मिल रहा है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर कटायन सेम हो या फिर अनायन सेम हो तो हम उसी हिसाब से कह देते हैं कि वो उस फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे कि NaCl और Na2SO4 ये सोडियम फैमिली के सॉल्ट्स हैं, ऐसा हम कहते हैं क्योंकि इनका जो कटायन है वो सेम है, Na+ है। इसी के तरीके से दूसरा एग्जांपल NaCl और KCl का, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा Na+ और Cl-। KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा K+ और Cl-। दोनों में Cl- मिल रहा है, अनायन सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों सॉल्ट्स बिलोंग करते हैं, क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट्स हैं ये, तो क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट्स हैं तो उसकी ही फैमिली को ये बिलोंग करते हैं, क्लोराइड की फैमिली को। इसी तरीके से अगर अनायन सेम है तो हम कहेंगे कि अनायन की फैमिली का सॉल्ट है, कटायन सेम है तो कटायन की फैमिली का सॉल्ट है, हम ऐसा कह देंगे। तो इसी आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं किसी भी सॉल्ट की फैमिली को। नेक्स्ट हमने पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था एक्टिविटी 2.14 के द्वारा, ये एक्टिविटी भी पेज नंबर 29 पर है। दोनों ही एक्टिविटीज जो है वो 28 और 29 पर पहले वाली एक्टिविटी है, दूसरी वाली एक्टिविटी है पेज नंबर 29 पर। जो ये एक्टिविटी है 2.14, इसमें आपको बोला गया था अलग अलग सैंपल लेने थे सॉल्ट्स के, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम एसीटेट CH3COONa, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो अलग अलग सॉल्ट्स आपको बताए गए हैं, आपको क्या करना था, इन सॉल्ट्स को पानी में घोलना था, एक सोल्यूशन तैयार करना था डिस्टिल वाटर यूज करके। डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जिसमें पहले से कोई आयंस नहीं होते हैं, तो ऐसे वाटर में घोलने के बाद आपको इसका सोल्यूशन बना के चेक करना था इसका pH लिटमस पेपर की सहायता से, और ये बताना था सॉल्ट्स एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप गेस भी कर सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। तरीका क्या था तुक्का लगाने का? तरीका ये था कि हमें ये चेक करना था कि वो जो सॉल्ट है वो कहाँ से आया है, कौन से बेस और कौन से एसिड से आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl की बात करें तो ये जो सॉल्ट है इसमें Na+ और Cl- हम लोगों को आयंस मिलते हैं। जो Na+ है वो आया होगा NaOH से, Cl- आया होगा HCl से, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है, उनका जो घोल होता है पानी में, उसका जो pH होता है वो लगभग न्यूट्रल होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं आपको बस ये चेक करना है कि वो कौन से एसिड से या कौन से बेस से आया होगा। अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब जब वो घुलेगा पानी में तो वो एक बेसिक सोल्यूशन बनाएगा, अगर उसका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पानी में घुलने के बाद वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक, एक बेसिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक एसिडिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेसिक का एग्जाम्पल आप देखो सोडियम एसीटेट CH3COONa, Na जो आया होगा वो आया होगा NaOH से, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एसीटेट जो ग्रुप होगा वो आया होगा एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इनको मिक्स करने पर जो सॉल्ट बना है सोडियम एसीटेट, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इसीलिए जब इसे पानी में घोलेंगे तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो स्लाइटली बेसिक मिलेगा और उसका pH मोर देन 7 होगा। अब एक एसिडिक सॉल्ट की बात कर लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसमें जो अमोनियम पार्ट है वो आया है NH4OH से, ये एक वीक बेस है, और Cl पार्ट जो है Cl- पार्ट ये आया है HCl से, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो सॉल्ट बना है NH4Cl ये एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, इसलिए जब इसे पानी में घोलेंगे तो जो सोल्यूशन तैयार होगा वो एसिडिक होगा और उसका pH लेस देन 7 होगा। तो इसी तरीके से आप गेस कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, और यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl से क्या क्या केमिकल्स बनते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि ये जो कॉमन सॉल्ट है ये किससे बना है, NaCl से बना है। और अभी अभी आप लोगों ने एक्टिविटी में देखा कि ये जो NaCl है ये बनता है NaOH से और HCl से, यानी कि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और इनके मिक्सचर से बनता है NaCl। यही NaCl हम लोग हमारे खाने में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता ही है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। आगे ये जो NaCl है ये हम लोगों को सी वाटर से, समुद्र के पानी से मिलता है। समुद्र के पानी में NaCl और इसके जैसे और भी कई सारे सॉल्ट्स घुले हुए रहते हैं, और इसी समुद्र के पानी के साथ कुछ रिएक्शन करवा के हम लोग कुछ रिएक्शंस अलग अलग करवा के ये NaCl जो है इसे अलग कर लेते हैं। कई जगहों पर ये जो NaCl है ये डिपॉजिट होके रहता है किनारों पर, डिपॉजिट होना मतलब जमा हुआ रहता है, और ऐसा जो हमारा विश्व है उसके कई जगहों पर देखा गया है। क्रिस्टल्स के रूप में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में ये डिपॉजिट हो जाता है जिस भी समुद्र के किनारे या फिर जहां पर भी ये एरिया है जिधर से सॉल्ट मिल रहा है वहां पर वो डिपॉजिट हो जाता है। मेनली ये जो NaCl है समुद्र के पानी से निकाला जाता है, तो समुद्र के किनारे डिफरेंट विश्व के कई इलाकों में ये डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है क्रिस्टल्स के रूप में। और कई बारी ये जो क्रिस्टल्स हैं इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ ऐसे हिस्से जो हमारे को कंज्यूम नहीं करने हैं, हमें नहीं खाने हैं, और उस NaCl में वो ना हो तो बेहतर होगा। ऐसी चीजों को इम्प्योरिटी कहते हैं। NaCl जो बना है वो सिर्फ NaCl से बनेगा तो वो प्योर होगा, उसमें कुछ और मिला हुआ होगा तो वो इम्प्योरिटी हो जाएगी। किसी चीज को दूषित कैसे करते हैं? अगर दूध में आप पानी ज्यादा मिला देंगे तो कहेंगे कि वो आपने पानी डाल के उसे दूषित कर दिया, क्योंकि दूध तो दूध से बना हुआ होना चाहिए। जितना ज्यादा पानी ऐड करेंगे उतना ज्यादा वो उसकी दूध वाली प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। इसी तरीके से जो NaCl है इसमें जब कोई ऐसी चीज मिक्स हो जाती है जिसके होने से उसकी प्योरिटी कम हो जाए, उसकी शुद्धता कम हो जाए, तो उस एडेड चीज को जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है उसे इम्प्योरिटी कहते हैं। और सॉल्ट के अंदर इम्प्योरिटी आ जाने की वजह से उसका क्रिस्टल जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, वो टूट जाता है, और ऐसे सॉल्ट को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। रॉक सॉल्ट कौन सा सॉल्ट हुआ? रॉक सॉल्ट वो सॉल्ट हुआ जिसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है, वो प्योर नहीं है। तो यहाँ पर आपको रॉक सॉल्ट की डेफिनेशन दी है, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग पेज नंबर 29 पर। ये जो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट टॉपिक है इसमें सेकेंड पैराग्राफ जो है उसकी थर्ड लाइन देखो। Deposits of solid salt are found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. तो impurities होने की वजह से इस rock salt का color जो होता है brown होता है, भूरे रंग का होता है, और ऐसे salt को हम rock salt कहते हैं। This is called rock salt. तो आप लोगों के घर में जो नमक आता है white color का आता है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो रॉक सॉल्ट होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होती है, क्रिस्टल्स जो होते हैं प्योर नहीं होते हैं, इसी वजह से वो भूरे रंग का होता है। विश्व के कई कई इलाकों में जो ये रॉक सॉल्ट है इसके बेड्स बने, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया में चिपका हुआ रहता था, ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया में चिपका हुआ रहता था। और ये कैसे बनता था? जब उस इलाके में किसी जमाने में समुद्र रहा होगा, और वो समुद्र जब पूरे का पूरा सूख गया, पूरा का पूरा ड्राई अप हो गया, तो उसमें जो नमक था, जो उसमें रॉक सॉल्ट था, वो वहीं पर सतह पर जम गया और वही बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट फॉर्म किया उसने। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट का मीनिंग है कि वो पूरे सतह पे पपड़ी के जैसे जमा हुआ रहता था, और ये बनता था समुद्र के सूख जाने की वजह से। रॉक सॉल्ट जो है इसकी माइनिंग भी की जाती है, जैसे कोयले की जाती है, खुदाई करके खनन करके जमीन के भीतर से भी निकाला जाता है इसे। और आप लोगों को पता ही है नमक के बगैर हम खाना हमारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा हमारे देश में तो कम से कम जो बिना नमक के खाना बना के खाता हो। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि नमक की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे देश में। हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। जब अंग्रेज हमारे कंट्री में आए थे तो उन लोगों ने क्या किया था कि हम लोग कॉमन लोग जो थे, हम लोगों को हमारे ही देश में नमक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। हम खुद बना करके नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, हमें उनसे खरीदना होता था और वो बहुत ही महंगा देते थे। तो उन लोगों ने ऐसा कानून बनाया हुआ था जिसके हिसाब से जो कॉमन लोग हैं, हम लोग जैसे जो लोग हैं, हम लोग खुद का नमक बना करके, जैसे कि समुद्र के पानी को उबाल करके क्या होता है नमक, उस टाइम पे लोग बना लेते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे इन लोगों ने ऐसा रूल बनाया था कि ये प्रोहिबिट कर देते थे, हम लोगों को ये नमक नहीं बनाने देते थे। तो इसको ध्यान में रख के, ये बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन इस छोटी सी चीज से गांधी जी ने क्या किया, सभी लोगों को इकट्ठा किया। ये छोटी छोटी चीजें ही पूरे देश को इकट्ठा लाने में हेल्प करती गई, और लास्ट में जाके जो स्वतंत्रता का युद्ध था, इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी, उसको इकट्ठा लड़ने में बहुत हेल्प हुआ इन सभी छोटी छोटी चीजों से। तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने बोला था सभी लोगों को कि हमारे देश में हम लोगों को हमारे लिए नमक बनाने की आजादी होनी चाहिए। और उन्होंने 1930 में मार्च में उन्होंने दांडी मार्च किया था, और इसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे मेन विमेन सब लोगों को लेकर, औरतों को, आदमियों को, बहुत सारे लोगों को लेकर के 24 दिन तक वो पैदल चले थे। 24 दिन तक पैदल चलने के बाद वो समुद्र तट पे पहुंचे थे, सी जो शोर होता है वहां पहुंचे थे, और किनारे पे पहुंच के उन्होंने एक नमक का ढेला तैयार किया था वहीं पर, पानी उबाल करके, जो समुद्र का पानी होता है उसे उबाल करके। और इससे एक मैसेज गया था पूरी कंट्री को कि आप लोगों को स्ट्रगल करना है, अपनी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप लोगों को उसमें लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो बेसिकली हुआ क्या था कि लोग उनके इस छोटे से एक्ट के कारण ही, इस छोटा सा जो उन्होंने काम किया था इसके कारण ही, सभी के सभी लोग लाठी खाने को तैयार हो गए थे, गोली खाने को तैयार हो गए थे, जेल जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन नमक वो खुद का बनाने लग गए थे। तो ब्रिटिशर्स को एक मैसेज गया था कि अब इंडियंस जो हैं वो अपनी चीज़ों के लिए खुद लड़ सकते हैं, अपनी चीज़ें वो लेकर रहेंगे, अपना हक अपना अधिकार वो लेकर रहेंगे ब्रिटिशर्स से। और धीरे धीरे करके आप लोगों को पता ही है, फाइनली गांधी जी ने मिलके, बहुत सारे लोगों ने मिलके हम लोगों को इंडिपेंडेंस दिलवा दी थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डांडी मार्च का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले हुआ था हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है पेज नंबर 29 पर, तो ये डांडी मार्च वाला है। नेक्स्ट पेज नंबर 30 पर कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ना है और इससे जो अलग अलग केमिकल्स बनते हैं वो पढ़ना है। ये जो कॉमन सॉल्ट है इससे हम लोग अलग अलग टाइप के केमिकल्स बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करके, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके ये अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये कैसे बनता है, जब हम लोग एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी के अंदर हम नमक को घोल देते हैं, सोडियम क्लोराइड को घोल देते हैं, उसके बाद इस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, बिजली पास कराते हैं। और इस बिजली पास कराने की प्रक्रिया में जो सोडियम क्लोराइड होता है उसे ब्राइन भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र से प्राप्त किया जाता है, तो इसे ब्राइन कहते हैं, BRINE, ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। और जैसे ही हम लोग इसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, बिजली पास कराते हैं, तो डिकम्पोज होके जो सोडियम क्लोराइड है ये NaOH बना के हमें देता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, इसको हम लोग कोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें क्या क्या बन रहा है, Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस बन रही है। तो क्लोरीन के लिए कोर यूज हुआ है, एल्कली यूज हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है बेसिक है, और बेसिस को एल्कली भी कहते हैं, उन बेसिस को कहते हैं एल्कली जिनका सॉल्यूशन बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। यहाँ पर देखो आपको रिएक्शन दी गई है, 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड, प्रोडक्ट्स हैं 2NaOH एक्वस प्लस Cl2 प्लस H2 गैस, Cl2 भी गैस है। Cl2 गैस जो है ये एनोड पर बनती है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि दो रॉड्स होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इनमें से भी दो होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है किसी बैटरी का, तो इलेक्ट्रोड्स भी दो होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो जो एनोड है उसके ऊपर हमारी Cl2 गैस बनती है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं NaCl सॉल्यूशन से, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे बनती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर 2.8 पेज नंबर 30 पर है, इसमें देखो आप लोगों को दिखाया गया है, कैथोड को नेगेटिव से बताया गया है, एनोड को पॉजिटिव से बताया गया है। लेकिन ये आप लोगों को बिल्कुल रट नहीं लेना है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चेंज भी हो जाते हैं, इनके जो साइंस है वो चेंज होते हैं, प्लस और नेगेटिव दूसरा जो होता है वो बदल जाते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो जाता है इनका। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है जिसमें NaCl से बिजली पास कराई जा रही है NaCl के सॉल्यूशन से, इसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव है, कैथोड जो है वो नेगेटिव है, और एनोड के ऊपर Cl2 गैस पैदा हो रही है और कैथोड पे H2 गैस पैदा हो रही है। और इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये सारे के सारे यूजफुल हैं, NaOH भी यूजफुल है, Cl2 गैस भी यूजफुल है, H2 गैस भी यूजफुल है। यहाँ पर देखो आप लोगों को अलग अलग यूजेस भी बताए गए हैं, Cl2 गैस जो है उसका इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, इसको Cl2 गैस को पानी साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल साफ करने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये एक पॉलीमर है तो पॉलीमर बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए, कीटाणु मारने के लिए Cl2 का यूज किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो फ्रिजेस में इस्तेमाल होता है, फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर आपके यहाँ होता है, AC में इस्तेमाल होता है, तो इसको बनाने के लिए भी Cl2 का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स कीटाणु मारने के लिए जो हमारे पौधों में लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, उन्हें मारने के लिए भी Cl2 का यूज किया जाता है, तो ये प्रोडक्ट भी काफी यूजफुल है। जो H2 गैस बन रही है कैथोड पे, इसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं, फ्यूल आपको पता है डीजल भी एक फ्यूल है, ईंधन, ईंधन कहते हैं इसे हिंदी में, तो ये जो H2 है इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के रूप में, मार्जरीन के रूप में, अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया आपको पता है NH3 होता है जो N2 प्लस H2 से बनता है, तो अमोनिया बनाने के लिए भी H2 का यूज किया जाता है यहाँ पर। और जो NaOH जो हम लोगों को बनाना था वो भी हम लोगों को मिल गया। NaOH का क्या क्या यूज है? NaOH का यूज है डीग्रीसिंग मेटल्स के लिए। मेटल के ऊपर ग्रीस तेल लग जाए, चिकनाहट आ जाए, तो उसको हटाने के लिए NaOH का इस्तेमाल करते हैं। साबुन बनाने के लिए NaOH का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट पाउडर जो है उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर, इन सब चीजों को बनाने के लिए भी NaOH का यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको बनाने में भी NaCl का इस्तेमाल होता है। सीखना है हमें कि किस तरीके से होता है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको बनाने के लिए आपको चाहिए Cl2 गैस, जो आप लोगों ने देखा अभी अभी ब्राइन सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमें मिली। तो यहाँ पर NaCl से हम जो Cl2 प्राप्त कर रहे हैं, जो हम लोग को मिल रही है, इसका हमें यूज करना है। Cl2 गैस का हम लोग को रिएक्शन करवाना है CaOH होल्डवाइज के साथ, और CaOH होल्डवाइज यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी कहते हैं। तो स्लेक लाइम का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ तो हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलता है CaOCl2। ये जो CaOCl2 है यही है ब्लीचिंग पाउडर, और ये हम लोग को मिला है स्लेट लाइम की रिएक्शन करवा के Cl2 के साथ में। आप लोग अभी छोटी क्लासेस में है तो आप यही याद करें तो ठीक रहेगा, लेकिन इसकी जो एक्चुअल जो कंपोजिशन होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। आप लोगों को बड़े क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो अभी के लिए आप लोग बस इतना याद रखिए कि ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका क्या क्या यूज है? इसके काफी यूज है। आपका जो कपड़ा होता है अगर उसमें कोई दाग लग जाए तो उसको छुड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका काफी इस्तेमाल होता है। पेपर बनाने के लिए, आप लोगों को पता है जो पेपर है वो लकड़ी से बनता है, और आपको ये भी पता है कि लकड़ी का कलर तो भूरा होता है, ब्राउन कलर का वो होता है, लेकिन पेपर जो हमें मिलता है वो वाइट होता है, एकदम सफेद। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो वुड पल्प है, जो हम लोग वुड प्राप्त करते हैं, उसका क्या किया जाता है, उसकी ब्लीचिंग करी जाती है, मतलब कि उससे गंदगी निकाली जाती है, उसको वाइट किया जाता है। बेसिकली ये जो ब्लीचिंग है इस प्रोसेस में वाइट हो जाती है, जो भी चीज आपके पास है उसका कलर उड़ जाता है, उसका कलर गायब हो जाता है। ब्लीचिंग कराना यानी कि कलर गायब कराना। तो पेपर फैक्ट्रीज जो होती हैं वो भी ब्लीचिंग का इस्तेमाल करती हैं, इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करती हैं पेपर बनाने के लिए। और कपड़े धोते वक्त लॉन्ड्री में भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई दाग उन्हें छुड़ाना हो तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है काफी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, ऑक्सीडेशन कराने के लिए। आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं ऑक्सीडेशन बोलूं, क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। बाकी ये कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अभी इतना ही रहने देते हैं कि ऑक्सीडेशन वही प्रोसेस है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। नेक्स्ट, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल किया जाता है पानी के अंदर से जर्म्स हटाने के लिए, जर्म्स भगाने के लिए, खत्म करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक तरीके से बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है। नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा की। जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग कॉमनली किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो खाना वगैरह बनाने के लिए, पकौड़ा बनाने के लिए या फिर कुछ भी क्रिस्पी चीज़ें बनाने के लिए। समटाइम्स जल्दी खाना पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या फिर NaHCO3 कहिए या फिर बेकिंग सोडा है, ये तीनों के तीनों सेम ही हैं। और ये जो NaHCO3 है इसको बनाने में भी NaCl का यूज होता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स है NaCl। तो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है आपको, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 फॉर्मेशन हो रहा है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी देखो ये जो NaHCO3 है ये कैसे बनता है, ये NaOH से बना है, NaOH बेस है, और जो HCO3 आया है ये आया है H2CO3 से। H2CO3 कार्बोनिक एसिड इसका नाम है, ये एक वीक एसिड है और इसमें बेस जो है वो स्ट्रांग है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसका सोल्यूशन अगर हम बनाएंगे, पानी में इसे घोलेंगे, तो जो सोल्यूशन तैयार होगा वो बेसिक होगा, नेचर उसका बेसिक होगा, पीएच उसका 7 से ऊपर होगा। और इसीलिए NaHCO3 का इस्तेमाल हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो इससे जो रिएक्शन होती है वो आपको दी गई है, 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करें तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसके काफी सारे इस्तेमाल है जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है बेकिंग सोडा और एसिड चाहिए होता है, बहुत ही वीक एसिड जो हम खा सकें ऐसा एसिड। और इन्हें मिक्स किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उस एसिड को मिक्स करते हैं, बनता है CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ वो एसिड जो हमने इस्तेमाल किया है। वीक एसिड सच एज टार्टरिक एसिड जो किस में होता है, टैमरिंड में यानी कि इमली में होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको मिक्स करने से यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाता है, बेकिंग पाउडर। और ये जो रिएक्शन है NaHCO3 प्लस H प्लस और प्रोडक्ट है CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो ये जो प्रोडक्ट है CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इसके निकलने की वजह से जब हम खाना बना रहे होते हैं, मान लीजिए केक बना रहे हैं या फिर बंद जो होता है पाव रोटी होती है उसे बनाने के लिए जो फ्लफीनेस उसमें आती है, जो वो सॉफ्टनेस उसमें आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पैदा होती है ये जब बाहर निकलती है तो छेद करके उस ब्रेड के अंदर से या फिर पाव रोटी के अंदर से निकलती है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, उसमें अलग अलग जगहों पर होल रह जाते हैं। यही कारण है कि केक को फ्लफी बनाने के लिए या फिर पाव रोटी को फ्लफी बनाने के लिए हम लोग ये जो बेकिंग सोडा है इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब वो बाहर निकलती है तो वो हमारे ब्रेड में होल्स कर देती है, काफी सारे छेद कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी फ्लफी हो जाता है। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो है ये एक एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अल्कलाइन है, नेचर में अल्कलाइन है क्योंकि बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है ये, इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और अल्कलाइन इसलिए क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है, ऐसे कोई भी बेसिस जिनका सोल्यूशन पानी में घुलने के बाद बेसिक होता है उन्हें अल्कलाइन कहते हैं। और क्योंकि ये बेसिक है नेचर में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पेट में एक्सेस एसिड हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम जब होती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी किया जाता है। इसमें से जो CO2 निकल रही है, आपको पता है ये बर्निंग के लिए बहुत एंटागोनिस्टिक होती है, इसका मतलब है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, CO2 गैस जो है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए जो ये NaHCO3 है इसका इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी करते हैं। तो ये थे वेरियस यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, और इसी के साथ में मैं आज की क्लास को ख़त्म कर रही हूँ यहीं पर। आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है जो भी आज आपने पढ़ा है, और बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।